अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारुख। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रास टैक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डाइवर्सिफाइड इश्यूज को अब तक डिस्कस किया जा चुका है। आपकी बहुत सारी ईमेल्स हमें मौसूल हो रही हैं, उनमें आजकल आप लोग एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, यानी पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के हवाले से आप बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। पाकिस्तान किन खदशात का शिकार है? ऑब्वियसली हम जानेंगे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जैसा कि मैंने अभी बयान किया कि पाकिस्तान को किन खदशात का शिकार है, पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, हमारी आवाम ये जानना चाहती है और आपकी राय इस बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके व्यूज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कहेंगे आज आप इस हवाले से?
देखिए आरुख, आज हमने जान के इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में इस कदर डिस इंफॉर्मेशन और झूठ बोला जा रहा है, इस कदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कौम के खिलाफ की जा रही है, कौम को इस कदर मायूसी में मुब्तला किया जा रहा है कि इसमें असल हकीकत लोगों को नजर नहीं आ रही। एक मायूसी फैल चुकी है कौम में, जिसको देखो वो ये परेशान है कि क्या ये मुल्क टूट जाएगा।
एक पैनिक
हो गया है, हर कोई परेशान है कि ये कौन से प्लेयर्स हैं, जो कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं कि जो पाकिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल में मुदाखलत कर रहे हैं और इस पूरे सिनेरियो को शेप और रीशेप कर रहे हैं। आज हम इस पर बड़ी सख्त और खुल के बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस वक्त दो खौफनाक फासिस्ट आइडियोलॉजीज के पंजे या नरगे में आ रहा है। एक मगरिब की तरफ से हम पे हमलावर हो रही है और एक हमारी सफों के बीच में, हमारे दाखिल से, हमारे वजूद के अंदर से निकलकर पाकिस्तान के वजूद को तबाह करने पर तुली हुई है,
अंदरूनी खल्फशार पैदा कर रही
है। हम दोनों को इस तरह रिकग्नाइज कराएंगे कि जो बाहर से आइडियोलॉजी पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहती है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर कब्जा करना चाहती है, वो न्यूकॉन जायनिस्ट हैं, वो ज्यूश भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू जायनिस्ट भी हैं। और जो हमने अपने तमाम पिछले प्रोग्रामों में न्यूकॉन जायनिस्ट को और उनकी आइडियोलॉजी को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा वो ग्रोह कि जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है, जो खुदकुश हमले पूरे पाकिस्तान में कर रहा है, हजारों मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को शहीद कर चुका है और पाकिस्तान में वो सूरत हाल पैदा कर रहा है जो बराह रास्त न्यूकॉन एजेंडे को सपोर्ट करती है। ये तकफीरी ग्रोह है जो हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर वो मजहबी दहशतगर्द जो मजहब का नाम लेकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं, इनको आप अलकायदा कहिए या तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहिए, इनके मुख्तलिफ ग्रोह हैं। कुछ साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्ला महसूद का है, सवात में मुल्ला फजलुल्ला का है। इसी तरह ये वो लोग हैं कि जो बराह रास्त पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए हैं। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर बाहर से जायनिस्ट के हमले में है और दाखिली तौर पर ये तकफीरी पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना चाहते हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इन दोनों के मकासद क्या? इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जो वेस्टर्न जायनिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन ज्यू और हिंदू जायनिस्ट हैं, वो पाकिस्तान पर हमला और करना चाहते हैं और दखल अंदाजी करना चाहते हैं, ये बहाना बनाकर कि हमारी सफों में तकफीरी और अलकायदा मौजूद है,
यूज कर रहे हैं उस चीज को।
और तकफीरी और अलकायदा पाकिस्तान पर इसलिए हमले कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के मगरिब से मुआहदे हुए हैं। यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से इन दोनों आइडियोलॉजीज के, इन दोनों फैशिस्ट आइडियोलॉजीज के कब्जे में, एक मगरमच्छ के जिस तरह दो जबड़े होते हैं उसके दरमियान पाकिस्तान की रियासत आ गई है अब। और इन दोनों को एक सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की जरूरत है। देखिए, जिस तरह हम ये बात आपको बता चुके हैं कि अमेरिकन 9/11 के बाद पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते के नक्शे को तब्दील करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस शक को जहन से अब निकाल दीजिए। अमेरिकन ने जो हमसे एसोसिएशन की अफगानिस्तान में तालिबान को निकालने के लिए, जो गलतियां और कोताहियां हमारी हुकूमत वक्त ने उस वक्त की कि जो हम तालिबान को हमने हटा दिया वहां से और उसके नतीजे में अपने लिए एक सिक्योरिटी क्राइसिस खड़ा कर लिया, एक नाइटमेयर खड़ा कर लिया अफगानिस्तान में, यानी तालिबान के होने की वजह से ना वो ड्रग्स थे वहां पर, ना बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी थी, ना तहरीक तालिबान का फसाद पाकिस्तान के खिलाफ था, ना इंडियन एसेट्स थे जो वहां काम कर रहे थे, ना इसराइली एसेट्स थे, ना अमेरिकन अफगानिस्तान में मौजूद थे। हमने अपने पैर पे एक ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि जिसकी बड़ी भारी कीमत हमें अब अदा करनी पड़ रही है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन ने जब उस सारे इलाके पर कब्जा किया और बराह रास्त, चूंकि उनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव सिर्फ तालिबान को हटाना नहीं था, उसके बाद लाजमन पाकिस्तान को भी डिसइंटीग्रेट करना था और पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करके पाकिस्तान के एटमी हथियारों को न्यूट्रलाइज करना था और इसके बाद मुकम्मल तौर पे आलम इस्लाम उनके कब्जे में चला जाता, क्योंकि कोई और मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं था जो मुजाहमत कर सकता।
पाकिस्तान को कहा भी इस्लाम का किला जाता है।
और इस वजह से जब अफगानिस्तान में ये अमेरिकन पहुंचे हैं, इन्होंने बराह रास्त आते ही बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करना शुरू किया, बराह रास्त उन्होंने उस गुस्से को, गम गुस्से को इस्तेमाल करना शुरू किया पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जो कि हमारे ट्राइबल एरियाज में पैदा हो गया था पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, इसलिए कि हमने तालिबान के खिलाफ अमेरिकन का साथ दिया था। और अमेरिकन ने इस ट्राइबल एरियाज में कुछ ऐसे ग्रुप तलाश करने शुरू किए कि जो उस अकीदे और आइडियोलॉजी पर हों जो, जिसको तकफीर कहते हैं, जिसके मुताबिक तमाम पाकिस्तान की रियासत काफिर है, ये मुर्तिद हैं, इनका कत्ल जायज है और इनको कत्ल करने में कोई शरई खराबी नहीं है। ये एक खौफनाक मजहबी अकीदा है जो एक छोटे से मुसलमान, जो तारीख में भी अक्सर ऐसा होता रहा है कि कुछ मुसलमान छोटे ग्रोहों में या फिरकों में ये ग्रोह पैदा हो जाता है। और इस ग्रोह ने अपना गुस्सा पाकिस्तान की रियासत पर जब निकालना शुरू किया और एक नजरियाती आइडियोलॉजिकल जंग शुरू की पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, देखिए कोई खुदकुश हमला आवर पैसे देके अपने आप को नहीं खत्म करता, वो जब हमला करने जा रहा है तो वो नजरियाती तौर पर एक बिलीफ के साथ जा रहा है, एक आइडियोलॉजी के तहत जा रहा है, क्योंकि अपने ख्याल में वो जन्नत में जा रहा है। और जब वो 40-50-60 मजदूरों को कत्ल करता है वहां फैक्ट्री के बाहर, तो उसको उसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती, वो ये समझता है कि 150 घरों के चिराग बुझा के उसने बहुत नेक काम किया। अब ये इतनी खौफनाक आइडियोलॉजी है कि जिसका, जो अगर ये आइडियोलॉजी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दे तो इसराइलियों को और इंडियंस को और सीआईए को मजीद कोई ग्रुप पैदा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं को फंड करें तो ये पाकिस्तान की रियासत को तबाह कर देंगे। और जब ये खुदकुश हमले पाकिस्तान में शुरू होते हैं तो ये पूरी दुनिया में वावेला शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो दहशतगर्दों के हाथ में गिरने वाला है, लिहाजा पाकिस्तान को मजीद डिसइंटीग्रेट करके इसके एटमी हथियार कब्जे में कर लिए जाए। सो ये बात लाजमन इसलिए जहन में समझने की जरूरत है कि जो कुछ पाकिस्तान में आप आसपास देख रहे हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक इन दोनों आइडियोलॉजी से है, एक तरफ तकफीर की आइडियोलॉजी से और एक तरफ न्यूकॉन आइडियोलॉजी से, जो पाकिस्तान के हिस्से बखरे करना चाहते हैं और हमारे एटमी हथियारों पर कब्जा चाहते हैं।
सही।
अब बुनियादी तौर पर जो अमेरिकन ने चार काम किए अफगानिस्तान में आने के बाद, पहला काम उन्होंने ये किया कि बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट को मदद करनी शुरू की, बीएलए को। दूसरा, उन्होंने पख्तून सब नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट को मदद करनी शुरू की जो हमेशा पख्तूनिस्तान बनाने की बात करते हैं। तीसरा, उन्होंने काम यह शुरू किया कि उन्होंने तहरीक तालिबान की मदद करनी शुरू की, असलाह इक्विपमेंट सप्लाईज रुपया और पैसा जो तहरीक तालिबान को मिल रहा है पाकिस्तान में धमाके करने के लिए, पाकिस्तान से तो नहीं जा रहा, ये तो पीछे अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है। और जो चौथा काम इन्होंने शुरू किया वो ये कि सिंध में इन्होंने इथनिक लाइंस पे पश्तून और उर्दू स्पीकिंग के दरमियान फसाद करवाने का प्लान बनाया।
जाय साहब, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूख। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी पाकिस्तान में न्यूक्लियर एसेट्स का कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे। जैद साहब काइंडली कंटिन्यू।
देखिए, तो जो बात हम कर रहे थे कि वो जो चार स्टेप्स उन्होंने लिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट किया, उन्होंने पख्तून सब नेशनलिज्म को सपोर्ट किया, उस मजहबी दहशतगर्दी को सपोर्ट करना शुरू किया जिसकी वजह से पाकिस्तान रीस्टेबलाइज होने का अंदेशा था और उनको बहाना मिलता था कि ये मजहबी दहशतगर्दी इस हद तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए। और चौथा, उन्होंने ये किया कि सिंध में, खासतौर पर कराची में, उन्होंने पश्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों और पाकिस्तानियों के दरमियान फसाद कराने के लिए प्रोपेगेंडा और एक प्लान बिल्ड करना शुरू किया। देखिए, 2009-11 के बाद 2001 से लेकर तकरीबन 2005 तक तो हम एक आंख बंद करके एक अंधी पॉलिसी फॉलो करते रहे जो अमेरिकन हमें कहते रहते करने के लिए। नतीजतन हमने खुद भी बहुत नुकसान उठाया, पूरी कौम को नुकसान पहुंचा, फौज को नुकसान पहुंचा और एक शदीद गम गुस्सा और कौम बिखरना शुरू हो गई। और ये वो वक्त था कि जिसमें अमेरिकन को पूरी तरह मौका मिला कि ये अपने एसेट्स को प्लेस करें पाकिस्तान के अंदर उस बड़े खेल के लिए जिसको ये खेलना चाहते थे,
पूरी प्लानिंग करने का मौका मिल गया।
2007 के आसपास जब पहली दफा पाकिस्तान को सॉलिड प्रूफ मिल गए इस बात के कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी और तहरीक तालिबान को जो पीछे से असलाह और इक्विपमेंट और सप्लाईज और वेपन्स दिए जा रहे हैं वो सारे इंडियन एसेट्स की तरफ से दिए जा रहे हैं, एंड दैट वाज द टाइम जब पाकिस्तान ने कन्फ्रंट करना शुरू किया अमेरिकन को, यानी उस वक्त अमेरिकन के आगे पाकिस्तान ने रेजिस्ट करना शुरू किया कि आपकी इस पॉलिसी से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है और आप दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवा रहे हैं। और वो जो प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर 9/11 के बाद, 2006 और 7 तक वो प्रेशर कम हो चुका था, पाकिस्तान खुद खासा इस हद तक काबिल हो गया था कि ये अमेरिकन इतने कमजोर हो चुके थे और इतनी मार खा चुके थे अफगानिस्तान में, और तालिबान चूंकि खुद बड़ा खुद जबरदस्त मजाहमत कर रहे थे, तो पाकिस्तान अब इस काबिल था कि अमेरिकन के साथ कुछ शराइत तय कर सके,
स्टैंड ले।
ये वो टाइम था कि जब पाकिस्तान ने, आप नोट करेंगे कि मुआहदे करने शुरू किए ट्राइबल एरियाज में, और पाकिस्तान ने फर्क किया अफगान तालिबान में और अलकायदा में और पाकिस्तानी तालिबान के उन ग्रोहों में कि जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हैं या जो पाकिस्तान की रियासत से जंग नहीं करना चाहते,
फर्क नहीं,
उससे पहले फर्क नहीं था। उससे खासा पहले भी पाकिस्तान ने ये अटेम्प्ट किए थे, जिस तरह साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्ला महसूद से पहले नेक मोहम्मद वहां पे कमांडर था पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहता था, पाकिस्तान ने उससे पीस डील की थी। जिस लम्हे पाकिस्तान ने नेक मोहम्मद से पीस डील की, अमेरिकन ने उसको कत्ल करा दिया। और इसी तरह अमेरिकन हर उस मिलिट्री कमांडर को अटैक करते थे जिससे पाकिस्तान पीस डील्स करता था, और जो पाकिस्तानी रियासत से जंग करते थे अमेरिकन उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, असलाह भी दे रहे थे, इक्विपमेंट भी दे रहे थे, टेक्नोलॉजी भी दे रहे थे, और सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट कहां कहां होती है, ताकि वो अपने आप को बचाव भी कर लें और पाकिस्तान आर्मी पर हमले भी कर सके। ये एक नापाक खेल था, और जो CIA ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी इंडियन रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और या पाकिस्तानी की रियासत के खिलाफ। ये बातें जब पता लगने शुरू हुई पाकिस्तान को 2007 में, इसके प्रूफ मिले, कन्फ्रंट किया गया अमेरिकन को, दैट वॉज द टाइम वेन अमेरिकन थॉट कि अब प्रेसिडेंट मुशर्रफ अपनी जिंदगी पूरी कर चुके हैं और अब इनको तब्दील कर देना चाहिए। हमेशा अमेरिकन के साथ ये होता है कि जब वो एक फौजी हुक्मरान को या सियासी हुक्मरान को इस्तेमाल कर लेते हैं खास वक्त तक, उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ का ये टाइम तकरीबन 2007 के करीब, जो अमेरिकन ने फैसला किया कि अब इनको रिप्लेस कर देना, क्योंकि और बहुत सारी बातें थी जो अमेरिकन चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ करें और वो नहीं कर रहे थे। मसलन डॉक्टर AQ खान वाले मसले पर अभी बैठे हुए थे वो, उन्होंने अमेरिकन के हवाले नहीं किया था। उन्होंने IPI गैस लाइन, वो जो पाकिस्तान ईरान गैस लाइन पाइपलाइन है, अमेरिकन चाह रहे थे कि पाकिस्तान उसको अबैंडन कर दे, पाकिस्तान ने नहीं किया। चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे रहे, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर हम काम करते रहे। तो उस बात के बावजूद कि पाकिस्तान ने एक शर्मनाक रिलेशनशिप वॉर ऑन टेरर के हवाले से अमेरिका के साथ रखी हुई थी, उसके नीचे पाकिस्तान ने कुछ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और अमेरिकन बहुत ज्यादा उस पर बेचैन हुए। लेकिन जो सबसे ज्यादा कन्फ्रंटेशन उस वक्त अमेरिकन के साथ, उस वक्त की हुकूमत की या प्रेसिडेंट मुशर्रफ की बिल्ड होना शुरू हुई कि जब ये सारे इश्यूज अमेरिकन को पेश किए जाने लगे कि आप इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए और अफगान हुकूमत और इंडियन हुकूमत इन्वॉल्व है इस सारी इंसर्जेंसी को, सो दैट वॉज द टाइम वेन अमेरिकन डिसाइडेड कि पाकिस्तान में जमहूरियत लाई जाए। देखिए ये जमहूरियत मिस्र में क्यों नहीं लाते और उर्दुन में क्यों नहीं लाते जब वहां 30-30 साल से बैठे हुए इनके इनके जो हुक्मरान जो इनके हलीफ हैं। जमहूरियत उसी वक्त लेकर आते हैं कि जब वो हुक्मरान उनके लिए डिफिकल्ट होना शुरू हो जाए। कोई तो वजह है कि अमेरिकन ने यह फैसला किया कि अब प्रेसिडेंट मुशर्रफ को रिप्लेस कर देना चाहिए, और दैट वॉज द टाइम वेन दे डिसाइडेड, और ये सारा प्रोसेस इन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और जमहूरियत का। कुछ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो उनके हाथ से बाहर निकल गए, यानी जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हो गया, जो असैसिनेशन हो गई, वो इनकी कैलकुलेशन में नहीं थी, इनकी प्लानिंग में नहीं थी, उसकी वजह से सारा खेल इनका टिप्सी टर्वी हो गया, सारा उनका खेल जो था उनको एक दफा रीऑर्गेनाइज करने में मजीद चंद महीने लगे, कुछ वक्त लगा कि उस सारे खेल को रीऑर्गेनाइज करें और अपने तमाम मोहरों को दोबारा जगह पे बिठाएं कि जो उन्होंने काम करना था उस पर। देखिए 1988 में जब जनरल जिया का क्रैश हुआ था तो एग्जैक्टली यही गेम था, जनरल जिया को अफगानिस्तान के दौर में उन्होंने इस्तेमाल किया जब उनका वक्त पूरा हो गया, जब उन्होंने ये अमेरिकन ने महसूस किया कि जनरल जिया को आप किसी पब्लिक तहरीक के जरिए या एक कू के जरिए या बगावत के जरिए नहीं कत्ल करा सकते हैं, या ताकत से नहीं हटा सकते हैं, तो उन्होंने उनकी बराह रास्त असैसिनेशन की, यानी मुसाद शामिल थी और इंडियन शामिल थे उस असैसिनेशन में, और उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत और इलेक्शन और उसके बाद सिविल हुकूमतें, क्योंकि सिविल हुकूमतों को जो कि कंट्रोल करना इनके लिए ये समझते हैं कि ज्यादा आसान है, और फौजी हुकूमत में यह है कि चूंकि फैसला एक आदमी के हाथ में होता है या तो वो पूरा इनकी तरफ चला जाता है या अगर वो स्टैंड ले लें इनके खिलाफ तो फिर सब कुछ इनके हाथ से निकल जाता है, लिहाजा ये इनके लिए फिर डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो शुरू में तो जनरल मुशर्रफ भी बिल्कुल इनके हाथ में रहे और ये जो चाहते थे ये उनसे करवाते थे एज फार एज वॉर ऑन टेरर और दिस एरिया इज कंसर्न। बाद में जब स्टैंड लेना शुरू किया पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान की पॉलिसी रीथिंक हुई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैंपेन शुरू हुई और उसके बाद एक पॉलिसी रीवैल्यूएशन हुई, तो ये अमेरिकन को बहुत बुरी लगी, कन्फ्रंटेशन अब बराह रास्त अमेरिकन से शुरू हो गई हमारी। देखिए 1953 में मुसद्दक के खिलाफ जो ईरान का प्राइम मिनिस्टर था, CIA ने कू अरेंज किया था, और वो एक क्लासिक एक एफर्ट थी, एक क्लासिक ऑपरेशन था CIA का, कि जिसमें उन्होंने करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करके सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज किया, उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट, जजेस को, जुडिशरी को, अखबारों को, मीडिया को, पुलिस को, सिविल सोसाइटी को, फौज को खरीदा और बगावत बरपा कराई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। वो एक क्लासिक ऑपरेशन है, उसकी तारीफ पढ़िए, ऑलमोस्ट वही टेक्स्ट बुक उन्होंने उठाई और अब पाकिस्तान पर अप्लाई करना शुरू कर दी इन्होंने, मुसद्दक ऑपरेशन 1953 का, कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज किस तरह लाया जाए, सिविल सोसाइटी की मोबिलाइजेशन, मीडिया की खरीदो फरोख, मीडिया में हैवी पेनिट्रेशन CIA ने की ताकि पब्लिक ओपिनियन तब्दील किए जा सके, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स को मोबिलाइज किया जिनकी फंडिंग अमेरिकन एम्बेसी से हो रही थी, और ये तमाम इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया एक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए कि जैसे पूरी कौम जमहूरियत चाहती है और डेमोक्रेसी चाहती है, वो डेमोक्रेसी जो कंप्लीटली CIA स्पॉन्सर्ड, CIA फंडेड, CIA कंट्रोल्ड थी, और मकसद उसका यह था कि वो तमाम रुकावटें जो इनको मिल रही थी अब आखिर में मुशर्रफ आखिरी दौर में, उन तमाम रुकावटों को खत्म किया जाए और वो ऑब्जेक्टिव जो इनके बाकी रह गए थे पाकिस्तान में अचीव होने के, उनको अचीव किया जाए। ये डेमोक्रेसी इन्होंने अचीव कर ली, अपनी, और ये साफ हम कह रहे हैं कि ये CIA स्पॉन्सर्ड डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान में आ जाइए, जितनी भारी इन्वॉल्वमेंट अमेरिकन एम्बेसी की और अमेरिकन की इस वक्त है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में, हमारा कोई मिनिस्टर और वजीर कैबिनेट से मशवरा नहीं करता लेकिन पहले अमेरिकन एम्बेसडर से मशवरा करता है जाके, इनकी मीटिंग्स दुबई में और लंदन में हो रही होती हैं। इस वक्त जिस लेवल पर इन्वॉल्वमेंट अमेरिकन की है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और अगर कोई ये कहता है कि ये CIA इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, तो या तो वो जाहिल है या वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है कौम को। तो ये जो कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं, मकसद ऑब्जेक्टिव इसका वही है जो न्यूकॉन्स का इनिशियल ऑब्जेक्टिव था, कि पाकिस्तान के अंदर इतना सोशल फ्रेगमेंटेशन बिल्ड की जाए, इतना फसाद बर्पा किए जाए सूबों के दरमियान, इतना फसाद बर्पा किए जाए सियासी तौर पर
इंटरनली इतने वीक हो
और जाए। आप इसका नतीजा ये देखिए कि ऑलमोस्ट पिछले एक साल से पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। PMLQ की हुकूमत जब खत्म हुई आखिरी तीन महीने उन्होंने काम बंद कर दिया, फिर केयरटेकर्स आए उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर ये हुकूमत आई ये तो काम है ही नहीं ये हुकूमत। तो पिछले प्रैक्टिकली 8-9 महीने से जब पाकिस्तान जैसे मुहिम में, जब मुल्क दो जंगें लड़ रहा हो, एक बलूचिस्तान में एक वजीरिस्तान में, और पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की खुरेज कैंपेन चल रही हो, ऐसे मौके पर जब फरकज ही ना हो पाकिस्तान का, हुकूमत ही ना हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का फिर क्या हाल होगा। ये सारा गेम CIA ऑर्केस्ट्रेट कर रही है और इंडियंस इसमें बराह रास्त मुलविस हैं इनको सपोर्ट करने में। तो इस वक्त की प्रेजेंट एनवायरमेंट तो ये है हमारे पास।
जी जैद साहब, हम यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली आपकी बातों से बहुत सारी आवाम जो है हमारी मुस्तफीद हो रही होगी। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्स। जैद साहब, एक सवाल यहां मैं आपसे करना चाहूंगी। बहुत अच्छे से प्रेजिडेंट मुशरफ, एक्स प्रेजिडेंट ऑफ कोर्स, अब वो हमारे हैं, एक कैंपेन उनके खिलाफ, एंटी कैंपेन तो उनके खिलाफ चल ही रही थी, लेकिन ये बात खुलकर ऐसा सामने नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से लग रहा था कि उनको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगी यही वक्त क्यों चुना गया उनकी रिप्लेसमेंट के लिए।
देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को फाइनली, अमेरिकन का शुरू में प्लान यह था कि जब पॉलिटिकल हुकूमत बनेगी तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ को एक फिगर हेड बना के प्रेसिडेंट छोड़ दिया जाएगा, ताकि अगर ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो फिर ये बैकअप के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाए।
सही।
इनको फाइनली तब्दील करने का फैसला तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले हुआ है, बहुत पहले नहीं हुआ। और कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें बराह रास्त तसादम हुआ पाकिस्तान का या ISI का CIA के साथ। हुआ ये कि आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका जाने से पहले एक स्टेप लिया गया जिसमें यह फैसला किया गया कि ISI को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं किया गया कि ISI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कंट्रोल करे।
हलचल मची
और बहुत तूफान और हलचल मची, और इतनी हलचल मची कि रात के 3:30 बजे इन ऑर्डर्स को रिवर्स कराया गया। और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम अमेरिका जा रही थी और उनकी गैर मौजूदगी में सुबह ही सुबह ऑर्डर्स को रिवर्स कराया गया यहां पर, और ये क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी, बड़ी एम्बैरेसमेंट और खिफत उठानी पड़ी गवर्नमेंट को कि साहब ये हमारा ये मकसद नहीं था और ये ऑर्डर गलत निकल गए थे, बड़ी कहानी दी गई जो भी था। मगर ये पहला क्लियर साइन था कि CIA अब बराह रास्त ISI को टेक ओवर करना चाहती है। और ये एक तसादम हुआ था एक पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का और अमेरिकन सीक्रेट सर्विस का, क्योंकि अब उससे पहले अगर आप नोट करें तो कई माह से एक कैंपेन ग्लोबल मीडिया में बिल्ड की जा रही थी कि ISI एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके काबू से बाहर निकल गई है, वो अपनी पॉलिसीज खुद बना रही है। क्योंकि बेसिकली हो ये रहा था कि पाकिस्तान ने अब अपनी पॉलिसीज, अफगान पॉलिसी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए बनानी शुरू कर दी थी। जो बात हमने कही ना कि इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि अच्छे तालिबान कौन है और बुरे तालिबान कौन है, पाकिस्तानी तालिबान में और अफगान तालिबान में फर्क किया। फिर पाकिस्तानी तालिबान में उन्होंने उन ग्रुप्स को रिकग्नाइज किया कि जो जेन्युइनली अफगानिस्तान में लड़ना चाहते हैं और वो हैं जो जेन्युइनली सिर्फ पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं, इनमें फर्क किया, और इस लिहाज से इनको डील करना शुरू किया पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। इस बात पर CIA भड़क गई, इस बात पर फैसला किया गया कि ISI को कंट्रोल किया जाए। आज भी यही स्टेटमेंट अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि ISI को कंट्रोल करना लाजिम है क्योंकि ये आपे से बाहर हुई भी है, आपे से बाहर सिर्फ अमेरिकन के लिए हुई भी है। कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे, जंग इस बात की। उसके बाद जो दूसरी हुई, जिस बात को पाकिस्तान के अखबारों में, प्रेस में रिपोर्ट भी किया गया कि जब अमेरिकन जनरल पिछले दिनों पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, आर्मी चीफ ने और ISI चीफ ने इनको प्रेजेंटेशंस दी जिसमें ये साफ साफ दिखा दिया कि बरामदाद बुक्टी जो BLA का हेड है वो दिल्ली में इंडियन रॉ ऑफिशियल से मिल रहा है, वो काबुल में रॉ के ऑफिशियल के साथ मिल रहा है और इंडियन एम्बेसी इसको सपोर्ट कर रही है, उनकी गाड़ियों में वो फिर रहा है। और उसके बाद कुछ वाकयात ऐसे हुए कि जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज ने अमेरिकन को इत्तला दी कि बैतुल्ला मसूद इस जगह से इस जगह पे जा रहा है और इस गाड़ी में सवार है, गाड़ियां रिकग्नाइज करा दी गई, कॉन्वॉय बता दिया गया, उसके बावजूद अमेरिकन ड्रोन ऊपर मौजूद थे, उन्होंने उस पर लॉक कर लिया लेकिन उस पर फायर नहीं किया, उसको बचाते रहे, वो प्रोटेक्ट करते रहे। और ये पाकिस्तान के लिए इतनी तश्वीशनाक और एक खौफनाक बात थी कि इस सारे सबूत को, जिसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद थी, कन्फ्रंट किया गया अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स के साथ और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ
right.
और यहां पर अमेरिकन ने बिल्कुल डिसाइसिवली देख लिया कि अब इनका सारा खेल खुल चुका है, इनके सारे राज खुल चुके हैं, अब पूरी तरह वो तसादुम में आ गई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। इन अमेरिकन इंटरेस्ट और पाकिस्तानी इंटरेस्ट अब बिल्कुल तसादुम में थे इस सारी हरकतों की वजह से। यहां पर यह फैसला किया गया कि सबसे पहले एक एक करके उन तमाम एलिमेंट्स को रिमूव किया जाए कि जो इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं कि आईएसआई शुड बी गिवन अंडर दी
डायरेक्ट
कंट्रोल ऑफ दी सिविलियन गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। नाउ सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में यह था प्रेसिडेंट मुशर्रफ को रिमूव करना। सो सडनली यू सॉ कंप्लीटली चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड। जो पहले उनका प्लान था कि इनको रखेंगे बैकअप के तौर पर, वो सब खत्म कर दिया गया और इमीडिएटली मूव इस तरह किया गया एंड एवरीबडी अबैंडन्ड हिम। यानी इनको अमेरिकन ने अबैंडन कर दिया, उनके सारे दोस्तों ने अबैंडन कर दिया, मीडिया बराह रास्त एक एनवायरमेंट क्रिएट की, उनके जो एसेट्स थे मीडिया में उन्होंने, सो ही वॉज गॉन। इसमें कोई एतराज नहीं है कि एक सिविलियन हुकूमत एक कानूनी अपना हक इस्तेमाल करते हुए मुल्क के प्रेसिडेंट को इंपीच कर दे, इसमें कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इंपीच होना चाहिए था अपनी पार्लियामेंट से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त है कि जब CIA प्लान करे उनको इंपीच करने की, जब अपनी कौम खुद करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह वही खेल था कि जो मुजीबुर रहमान के खेल, जब मुजीबुर रहमान को पकड़ा गया और अगरतला साजिश के अंदर वो गिरफ्तार होता है तो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सिर्फ अयूब की मुखालफत में उन गद्दारों का साथ दिया जो पाकिस्तान तोड़ना चाह रहे थे, उसकी हम पूरी तफसील डिस्कस कर चुके हैं। आप जरूर सियासतदानों का साथ दें, आप जरूर फौजी हुक्मरानों या डिक्टेटर्स की मुखालफत करें, लेकिन CIA रॉ के कहने पर ना करें, अपने कहने पर करें। और होता पाकिस्तान में यह है कि जिस तरह 71 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहते हैं लेकिन वो रॉ इंजीनियर्ड और रॉ स्पॉन्सर्ड इलेक्शन थे और CIA इंजीनियर्ड इलेक्शन थे, इसी तरह के आज की तारीख में भी आज भी यही मामला हुआ है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि अपना किसी आदमी को ये प्रेसिडेंट बनाएंगे
right.
किसी ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाएंगे जो अमेरिकन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हो, उनकी सारी बात को सुने। और थर्ड स्टेप प्रॉब्ली ये होगा कि या तो आर्मी चीफ को चेंज करेंगे या डीजी ISI को चेंज करेंगे। और चौथा ये होगा कि फिर ISI को दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे डालने की कोशिश करेंगे या उसके अंदर अपने आदमी बिठा के इसको काबू करने की कोशिश करेंगे।
बड़ी क्लियर कट इंडिकेशंस दे रहे हैं आप यहां
हम पे। बड़ी साफ बात इसलिए कर रहे हैं कि आज कौम को जो खतरात हैं बिल्कुल वादे कर देने चाहिए, क्योंकि ये मीडिया नहीं बताएगा। अब इन बातों से हमें भी खतरा होगा, हमें मालूम है, लेकिन हम ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी कौम के 16 करोड़ मुसलमानों और पाकिस्तान को जो आलम इस्लाम का आखिरी किला है इसके खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं अब इस कौम को पता लग जाना चाहिए कि इसके खिलाफ क्या गेम प्लान हो रही है।
बिल्कुल।
और इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, ये हम इनका गेम बता रहे हैं, ऐसा ये कर नहीं सकेंगे, होगा नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि जब ये बातें जब राज खोल दी जाए दुश्मन के, उनके सारा गेम प्लान खोल दिया जाए तो कौम बेदार हो जाती है, कौम को पता लग जाता है कि गेम क्या हो रहा है। हुक्मरानों से भी हम कहेंगे कि होश में आए और इस वक्त CIA और अमेरिकन का खेल कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क न करें। क्योंकि अगर आप ये नोट करें कि इस वक्त पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग और फ्रंटियर में और पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं कि जो अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ हो चुके हैं, लोगों को पता लग गया है कि ये दहशतगर्द किसका खेल खेल रहे हैं। पहले आर्मी में भी कंफ्यूजन थी, जब इनके खिलाफ जंग की जाती थी तो फौज में भी कंफ्यूजन थी कि शायद हम अपने लोगों को मार रहे हैं, लेकिन अब ये बात जबकि इंडियन एसेट्स, अफगान एसेट्स, CIA एसेट्स मालूम हो चुका है कि ये लोग इसमें शामिल हैं, पाराचिनार की जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर बराह रास्त अफगान आर्मी के कई हजार ट्रुप्स शामिल हैं जो कि आके यहां फसाद बर्पा कर रहे हैं, लोग पकड़े गए हैं यूनिफॉर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, सवात में उनके वेपन्स और इक्विपमेंट और सप्लाईज मिल रही हैं। और यही हाल साउथ वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो खुल के टीवी पे आकर ओन करते हैं कि सारे मुल्क में खुद कुछ हमले हमने किए हैं और हम मजीद करेंगे जाकर, बेगुना इंसानों को कत्ल करेंगे। ये सारे पहचान लीजिए अच्छे तरीके से कि ये इंडियन और इसराइली और CIA एसेट्स हैं, ये जहादी नहीं है। अफगान तालिबान मुल्ला उमर जहादी है, फर्क करें दोनों में। और ये वो सारे एलिमेंट्स हैं कि जो पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना चाह रहे हैं और जिसकी और इस सारी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये इस वक्त जो हमारी सियासी चेंजेस आपको नजर आ, आप नोट नहीं करते कि बलूचिस्तान में 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन छुट्टी दी गई है।
दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। मैंने मतलब जब अभी भी मैं जान रही हूं तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, बहुत बड़ा इशू है,
रिपोर्ट नहीं किया इस बात को। 15 अगस्त वाले दिन बलूचिस्तान में क्यों छुट्टी दी गई सरकारी तौर पर? देखिए इस वक्त अमेरिकन ने जो प्लेसमेंट की है अपने एसेट्स की, जो कराची के अंदर फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं पश्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का, बिलावजह झूठा प्रोपेगेंडा कि ये फसाद हो रहा है, वो फसाद हो रहा है और ये पहुंच गए वो पहुंच गए, हंगामा हो जाएगा, तसादम होने वाला है, कुछ भी नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड है सारा। ये 1953 का मुसद्दक कू का CIA मैनुअल उठा लीजिएगा, जो कुछ आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही हो रहा है आज पाकिस्तान।
बिल्कुल जैद साहब, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैद साहब आज बहुत सारे इंकशाफात हमारे सामने कर रहे हैं, यकीनन आपको जानकर हैरानी भी हो रही होगी, लेकिन हमारा मकसद प्रोग्राम का यही है कि आप ये बातें सुने, समझें और फिर इन पर गौर करें। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टेक्स। हम बताते चले कि आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से। जैद साहब कंटिन्यू प्लीज।
अब देखिए ये लोग प्लानिंग करते हैं और अल्लाह कहता है कि अल्लाह अपनी चालें चलता है और ये अपनी चाल चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी चालें नाकाम कहां हो रही हैं। अफगानिस्तान में अल्लाह के फजल से अफगानिस्तान के तालिबान ने, मुल्ला उमर ने और हिकमतियार और जलालुद्दीन हक्कानी के ग्रुप ने इस वक्त लिटरली काबुल का मुहासरा कर लिया है। नेटो फोर्सेस का हाल यह है कि वो अब पहले तो यह था कि मेयर ऑफ काबुल कहलाता था कारजाई, अब शायद मेयर ऑफ हिज ओन पैलेस भी नहीं है, अपने महल से बाहर नहीं निकल सकता, उसको इतनी दिक्कत हो रही है।
सही।
और उसका गम गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। अफगानिस्तान में जो जंग हो रही है, एक बात याद रखिएगा, 90% उस जंग के तमाम फैक्टर्स और रीजंस अफगानिस्तान के अंदर ही हैं। अगर पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया से कुछ लोग चले भी जाते हैं उस जंग में शामिल होने के लिए, तो उनका रोल 6 या 7% से ज्यादा नहीं है। वो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस नहीं डाल रहे हैं उस जंग पे जो मैदान जंग जो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है।
सही।
और दूसरी बात याद रखिएगा कि जंगें जब लड़ी जाती हैं तो वो सिर्फ अफराद से नहीं लड़ी जाती। अफगान जंग जो लड़ी गई थी पाकिस्तान को बेस एरिया बनाकर, तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जो करामत होते हैं। एक, आपको मुजाहिदीन चाहिए होते हैं लड़ने के लिए जो अंदर जाते हैं।
सही।
दूसरा, आपको बेस एरिया चाहिए होते हैं जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जहां वो तरबियत लेते हैं या आराम करते हैं। और तीसरा, उनको एक मैसिव असलहे की सप्लाई चाहिए होती है जिससे वो जंग करते हैं। ये सबको मालूम है, ये बात नेटो को भी मालूम है, अमेरिकन को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई असलहा अफगानिस्तान में नहीं जा रहा है।
बिल्कुल,
ये तो सबको मालूम है ये बात। तो फिर जो जंग अफगानिस्तान में चल रही है उसका असलहा कहां से आ रहा है? वो असलहा ईरान और रूस की तरफ से आ रहा है, ये सबको मालूम है। लेकिन चूंकि टारगेट उन्होंने पहले पाकिस्तान को करना है, लिहाजा अभी ईरान को वो टच नहीं कर रहा है, रूस के खिलाफ बात नहीं कर सकते वो। और अगर चंद यहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स चले भी जाते हैं पार अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, तो उससे कोई डिसाइसिव या फैसला कुन तब्दीली नहीं आ जाती अफगानिस्तान के अंदर जंग की सूरत हाल में। अफगानिस्तान के मुल्ला उमर और उनके तमाम मुजाहिदीन और तमाम अफगान वो अंदर ही लड़ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आते वो। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान अपने ट्राइबल एरियाज में बेदरेक कत्लेआम करे, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सियासी नुक्ते नजर से भी और हकीकत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ एक खुराफात बात है। और पाकिस्तान ने बहुत समझदारी से अब अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया है ट्राइबल एरियाज में। और जब एक मर्तबा पाकिस्तान ने एक ये फैसला किया और फर्क किया, आप खुद देखेंगे फिर मकामी कबाइल भी उठ खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। सवात में भी मकामी लोगों ने बिल्कुल पाकिस्तानी रियासत की मदद की, बाजौड़ में भी मदद की, साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोह बन गए हैं कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। और उन एलिमेंट्स को रिकग्नाइज कर लिया गया है कि जो सीआईए एसेट्स हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक तो बहुत सख्त मार पड़ी है उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर रहे हैं पिछले चंद दिनों में। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने वो तमाम पश्तून सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स, अमेरिकन ने जो फ्रंटियर में ट्राइबल फ्रंटियर में बिठाई थी, फ्रंटियर में हुकूमत जिनकी कायम की थी, जो पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, इनकी और मकामी तालिबान की लड़ाई हो गई। नतीजा ये है कि पिछले चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि एक फूट पड़े एक फसाद हो गया है कि और जो एएनपी है फ्रंटियर में उसके बहुत ज्यादा अफराद को मुसलसल कत्ल किया जा रहा है मकामी तालिबान की वजह से, क्योंकि मकामी तालिबान ये समझ रहे हैं कि एएनपी हुकूमत ने आकर इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन करवाया, लिहाजा इनमें आपस में जंग शुरू हो गई। और जिसकी वजह से जो एएनपी है बिल्कुल दब के बैठ गई है, एएनपी के तमाम क्यादत इस वक्त शक खौफ में मुब्तला है पूरे फ्रंटियर में, बिकॉज दे आर ऑन द हिट लिस्ट। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी की कैंपेन है, उनके तमाम बड़े बड़े लीडर्स, चूंकि नवाब अकबर बुगटी या बलाश मरी अफगानिस्तान के अंदर कत्ल हो गया था और बरामदार जो है वो काबुल या दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है, तो उनकी एक्सप्लोसिव बारूद सामान तो उनके पास पहुंच रहा है, पाइपलाइन तो वो तोड़ सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अलग करने की सलाहियत इनके पास नहीं है। तो अल्लाह के फजल से यहां भी खतरा नहीं है कि बलूचिस्तान को टूट के अलग हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हैं इसलिए कि जो हुकूमत अब बनी है वहां पर वो सारे प्रो अमेरिकन या सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले हैं और प्रो इंडियंस हैं, जब भी तो उन्होंने 15 अगस्त को छुट्टी दी बलूचिस्तान में।
बिल्कुल।
और ये बात कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस वक्त जितने भी बीएलए के दहशतगर्द पकड़े गए थे उन सबको रिलीज किया जा रहा है बेदरे, ताकि वो दोबारा जाके पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड करें। इसी तरह सिंध में, कराची में मुसलसल कोशिश की जा रही है कि खुरेज़ फसादात कराए जाएं, और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने करम किया है कि अभी तक फसादात नहीं हुए वहां पे, जो कोई टेंशन और फ्रिक्शन है। लेकिन इस सारे हंगामे में अभी तक फौज ने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है, फौज ने कतन सियासत में दखल नहीं दिया, फौज ने इस बात में भी दखल नहीं दिया कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ को सियासी जमातें जो है वो इम्पीच कर दें या वो रिजाइन कर लें, फौज ने इसमें भी दखल नहीं दिया कि इस वक्त सियासी मनूवरिंग या हुकूमत किसकी बन रही है, क्या सारा मामला है, और फौज सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनल काम की तरफ फोकस किए हुए।
नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, जैसा फौज मुदाखलत करने की कोशिश करती है।
लेकिन क्योंकि मुशर्रफ के दौर में इतने अरसे तक फौज अपने आप को इन्वॉल्व करती रही है कि अब फौज में भी ये बहुत बड़ी अवेयरनेस ये है कि हम अपने आप को अलग करके रखें और सियासत को दखल ना दें और जो कुछ हो रहा है वो सियासतदानों को करने दें। और इसमें तो सियासतदान भी मान रहे हैं कि इस वक्त फौज कतन दखल नहीं दे रही। लेकिन अगर आने वाले वक्त में अगर वही गेम प्लान जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मुशर्रफ को हटाया गया था, यानी आईएसआई को कंट्रोल किया जाए और वो पॉलिसीज जो अमेरिकन चाहते हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट की जाए, जिनका ताल्लुक हमारे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से है, डॉक्टर एक्यू खान से है, पाकिस्तान की उस रोल से है जो पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज में अपनी जंगी हिकमत एमली डिप्लॉय कर रहा है, इससे है, और अगर हुकूमत ने इस पर बराह रास्त मुदाखलत करने की कोशिश की तो फ्यूचर यह है कि फिर बराह रास्त हुकूमत की और फौज के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की तरफ से कुछ मदद हमारी और भी हुई, जिसकी वजह से तमाम अमेरिकन और इंडियन गेम प्लान जो है वो खतरे में पड़ गया। कश्मीर में एक जबरदस्त बगावत बरपा हो गई इंडियन हुकूमत के खिलाफ, और 60 साल के अरसे में पहली मर्तबा इंडियन जर्नलिस्ट और मीडिया ने लिखना शुरू किया है कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है और कश्मीर को आजादी दे देनी चाहिए। यह नाकाबिले यकीन बात है। इस दफा श्रीनगर में 14 अगस्त पर जितने झंडे लगे हैं पाकिस्तान के, उससे पहले कभी नहीं लगाए गए, और सबसे बड़ा झंडा रेडियो श्रीनगर पर लगाया गया था। और इंडियन आर्मी इस वक्त दहशत और पैनिक में है, यानी और आप हमारे मीडिया का हाल देखिए कि इस वक्त कश्मीर में होने वाली बगावत को जरा सी भी कवरेज नहीं दे रहा।
किस वजह से बगावत, क्या वजूहात है?
ये तमाम फ्रस्ट्रेशन देखिए, हिंदू ज़ायनिस्ट हमने पहले ही अर्ज किया था कि जब उनको मौका मिलेगा मुसलमानों की जिंदगी तो तंग करेंगे और अजाब में करेंगे वो।
सही।
इस दफा कश्मीरियों ने, इंडियंस ने कोशिश की कि कई एकड़ जमीन कश्मीरियों की प्राइम लैंड जो थी वो हिंदुओं को अलॉट करना शुरू कर दी। ये एक छोटा सा ट्रिगर था जिससे बात भड़क गई, और जम्मू के हिंदुओं ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए जहां से कश्मीर की इकोनॉमिक सप्लाई लाइन जाया करती थी। सारे उनके जो गल्ले के और खुराक के और फलों के ट्रक्स थे वो जो बाहर जाते थे उनको रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ कश्मीरी मुसलमानों का, कि उनकी सप्लाई बाहर ना जा सकी बिकने के लिए। जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, जब बिल्कुल खुदकुशी लिटरली नौबत ऐसी आ गई, क्योंकि उनको कत्ल करने पूरे कई लाख कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम, लिटरली इकोनॉमिक कत्लेआम था ये, तो कश्मीरी मुसलमान भड़क गए। और ये इतनी स्पॉन्टेनियस तरीके से ये बगावत बरपा हुई है कि दिल्ली वो स्टंड, इनके होशो हवास में ये बात नहीं थी, इनके हाथों के तोते उड़ गए जैसे कहते हैं, कि ये हुआ क्या है कि बैठे बिठाए वो कश्मीरी जो किसी हद तक डोसाइल हो गए थे पिछले चंद सालों में, और लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए। 5 लाख भारतीय फौज के होने के बावजूद पाकिस्तान से रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे इस तरह लगाए गए हैं कश्मीर में कि खुद इंडियन मीडिया फटपटा के कहता है कि अब हमें कश्मीर को आजादी दे देनी चाहिए वरना ये हमें भी ले बैठेंगे।
वही बात जाहिर साहब कि हमारे मीडिया ने इसको कवरेज नहीं थी,
और ये शर्मनाक बात है। और यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त हमारे मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी भारी पेनिट्रेशन है CIA की, कि वो किसी सूरत में ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया को शर्मिंदा या एम्बैरेस किया जाए, या पाकिस्तानी किसी तरह कश्मीर की मदद करे, या पाकिस्तानी कौम जो उठ के कश्मीरियों की सपोर्ट करना शुरू करे। इस वक्त में कि जब हालात लिटरली एनालिस्ट ये कह रहे हैं, खुद इंडियन जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ी मदद और कश्मीरियों की दे दी जाए तो कश्मीर मजबूरन इनको आजाद करना पड़ेगा, और हम इतना करीब पहुंच चुके हैं, और कश्मीरी खुद कुर्बानियां दे रहे हैं। रोज आप देखिए 15-20-30-40 वहां शहीद होते हैं, इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये लेकिन ये ताइद अल्लाह की तरफ से आई कि इसकी वजह से इंडियन ऑपरेशंस इन द रीजन बुरी तरह डिस्टर्ब हुए। बैतुल्ला महसूद सख्त बीमार हो गया, वो इस काबिल नहीं कि लीड कर सके। बाजौड़ में इनको बड़ी मार पड़ी, सवात में इनको बड़ी मार पड़ी, मकामी आबादी उठ खड़ी हुई इनके इन मिलिटेंट्स के खिलाफ जो खुद कुछ हमले पाकिस्तान में कर रहे थे। तो वो तमाम अमेरिकन एसेट्स जो इस इलाकों में थे वो इस वक्त अंडर प्रेशर है, और अमेरिकन इसकी वजह से परेशान है।
बिल्कुल जैद साहब, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप हमें बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की डिस्कशन जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक व्यूअर्स, यू वॉचिंग ब्रास टैक्स। हमारे साथ मौजूद हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब। सर, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी, बहुत सारे हालात पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, हालात हाजरा के हवाले से। आजकल के हालात में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होना चाहिए, और क्या वो अपना रोल किस तरह से प्ले कर रही हैं, इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं?
देखिए, आपके सामने है ये बात, आप सर्वे करवा के पाकिस्तान में देख लीजिए, 99% पाकिस्तानी सियासी जमातों को, उनके कायदीन को गालियां दे रहे हैं इस वक्त, यानी लिटरली कैसे, और इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी कौम इनको, इन पर लानत कर रही है और इन पर थूथू कर रही है। उस तमाम हरकतों की वजह से ये सारे सियासतदान कर रहे हैं इस वक्त।
बिल्कुल,
यानी लिटरली एक साल हो गया पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, इलेक्शन कराए महीने हो चुके हैं, और ये लोग अभी तक कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में इन लोग को। और ये खतरात जो पूरी तरफ चारों तरफ मुल्क के फैलते चले जा रहे हैं, मुल्क में खुदकुश हमले हो रहे हैं, 2 जंगें मुल्क की सरहदों के अंदर हो रही हैं, इंडियन और इसराइलीज और मुसाद और अफगान हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को हिस्से बकरे करना चाह रहे हैं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम थ्रेट में है, ISI को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी पर प्रेशर डाले जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बाहर की दाखली ताकतें, खारजी ताकतें जो है पाकिस्तान के दाखली मामलों में दखल देकर पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, और ये अपने छोटे छोटे मामलों के ऊपर जिनकी कोई हैसियत नहीं है आपस में झगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत मरकज की जरूरत है, पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत सेंटर की जरूरत है कि जो तमाम सूबों के ग्रीवेंसेज को दूर करे, थ्रेट एनालिसिस करे, इन सारी चीजों को जिसको हमने रिकग्नाइज किया और आइडेंटिफाई करवाया, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज करके अच्छे तरीके से एक एक इशू को हैंडल करे। यकीन कीजिए, सारे इश्यूज मैनेजेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा अल्लाह के फजल से मुल्क को नहीं है। बहुत सारी चीजें सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, उस बड़े CIA खेल का हिस्सा है ये कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस ये क्रिएट किए जाएं। इनके एसेट्स अब ताकतवर जगहों पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं इसमें खासे लोग अनइलेक्टेड हैं।
क्राइसिस क्रिएट किए जा रहे हैं फूड के, एनर्जी के क्राइसिस, इसका मतलब है असल में इनकी कोई स्पेस नहीं है।
ये तमाम चीजें बहुत आसानी से हैंडल की जा सकती हैं, ये तमाम चीजें पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चंद माह में 7 अरब डॉलर गायब हो गए, कहां गए किसी को नहीं मालूम है। पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस हो रहा है, देखिए जब गवर्नमेंट ही नहीं है गवर्नेंस कैसे होगी,
बिल्कुल।
तो ये सारे क्राइसिस तो उस वक्त होते हैं कि जब मुल्क में कोई मरकजी ना हो, जब एक एक शख्स 5-5 वजारतें चला रहा होगा तो फिर कौन सी वजारत चलेगी यहां पर। ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, खतरात इतने बड़े नहीं है। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जा रही है, एक मीडिया टेररिज्म भी है। ये तस्वुर दिया जा रहा है कि पेशावर फॉल होने वाला है, कभी कहते हैं कि कराची पर जनाब तालिबान कब्जा करने वाले हैं, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के एटमी हथियार जो है वो दुश्मन के हाथ दहशतगर्दों के हाथ में। ये सब मीडिया टेररिज्म है, ये सब दहशतगर्दी है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जाती है, परसेप्शन वॉरफेयर की जा रही है कौम को डिमोरलाइज करने के लिए, और वो उसमें कामयाब भी हुए हैं। इन रियलिटी हम साफ बता रहे हैं, अल्लाह के फजल से कोई फेडरेशन को थ्रेट नहीं है, प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, कौमों की तारीख में ऐसे वाकयात आते हैं, इसको हैंडल करना होता है, इनको फेस करना होता है। अभी तक दुश्मन इतना ताकतवर नहीं है कि पाकिस्तान की फेडरेशन को तोड़ के अलग कर दे। 1968 और 71 के क्राइसिस समझिए, सिर्फ एक सदर की दुश्मनी में दुश्मनों का साथ मत दीजिए, दुश्मनों का गेम प्लान मत फॉलो अप कीजिए, और आपस के झगड़े जरा बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जिस किस्म का क्राइसिस मुल्क में एक एनर्जी का और फूड का पैदा हो गया, जिस किस्म का गवर्नेंस क्राइसिस है, तो फिर या तो फिर एक जमीन पर सड़क पर इंकलाब बरपा होगा कि लोग इनको अपने इनके घरों से निकालकर सजाएं देंगे, या फिर वही होगा कि जो पाकिस्तान की तारीख में होता है कि फौज को मजबूरन दखल देना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि इस सारे मामलात को तबाही से बचाएं, तो इस वक्त की जो हुकूमत और सियासतदान है इनको अमेरिकन खेल बंद करना पड़ेगा, इनको तसादुम का रास्ता बंद करना पड़ेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और उनको तवज्जो देनी पड़ेगी उन इश्यूज के ऊपर, उस खेल पर जो सीआईए पाकिस्तान में क्रिएट कर रही है। अगर ये सीआईए का खेल खेलेंगे, देखिए पाकिस्तान के इस वक्त बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स पे वो लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्टेड नहीं है, जो लिटरली वाशिंगटन से भेजे गए हैं पाकिस्तान की अहम जगहों पर बैठकर पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने के लिए, और ना उन्होंने ओथ लिया ना वो किसी के आगे जवाब दें, और वो सीआईए प्लांटेड एसेट्स हैं। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, आसपास देखिए आप खुद पहचान लेंगे उन्हें। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की बिल्ड हुई भी है, खेल सारा ये है। तकफीरीज और न्योकॉन्स को एक दूसरे की जरूरत है, अफगानिस्तान से बैठ के वो तकफीरियों की मदद कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर कयामत बरपा हो, और सब नेशनलिस्ट बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एसेट्स को भी एक मजबूत मरकज की बेशक जरूरत है, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई खतरात अभी ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी तक फौज मुस्तकम है, फेडरेशन अपनी जगह पर मौजूद है, और जो अमेरिकन चाहते थे, जो उनके एसेट्स थे ऑन ग्राउंड जिनकी वजह से इन्होंने तब्दीली लानी थी या पाकिस्तान को तबाह करना था, अल्लाह ने उन एसेट्स को बहुत चोट लगाई है, बड़ा नुकसान उनको हुआ है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हमारी जनरल पब्लिक है वो बहुत ज्यादा अपसेट है,
हम यही बात कह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, दुआ भी कीजिए बददुआ भी कीजिए, वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके लिए बददुआ भी कीजिए, और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के फजल से कोई हालात ऐसे बुरे नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज हमने सारा खेल खोल के रख दिया इनके सामने, और अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के सियासतदानों को दोनों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है कि आपस में तसादुम करने के बजाय मिलकर बैठें और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को दिफा करें, और जो इंडियन इसराइली और मुसाद और अफगान खेल पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है उसको काउंटर करें, आपस में लड़कर दुश्मनों को मौका न दें।
जैद साहब, दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि अब प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तानी कौम के लिए आपका क्या मैसेज होगा?
देखिए पाकिस्तानी कौम से हम ये बात कहेंगे कि अगर आप मायूस हो गए और खौफजदा हो गए तो इसका मतलब है कि दुश्मन का प्रोपेगेंडा जीत गया। अगर आप आपस में उलझ गए, आपस में लड़ पड़े, आपने अगर कराची में और सिंध में पख्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों के लेवल पर जंग शुरू कर दी, और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर शक करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की रियासत टूट रही है और पाकिस्तान की रियासत अलग होने वाली है और ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, तो इसका मतलब है दुश्मनों का प्रोपेगेंडा जीत गया। देखिए हमारा एक ही घर है, दिस इज द प्लेस जहां हम पैदा हुए, जहां हमने रहना, जहां हमने मरना, और हमारे बच्चों का भी यही घर है। इस मुल्क के लिए हम लड़ेंगे भी, और इस मुल्क के लिए हम हर तरह से स्टैंड भी लेंगे और हर कुर्बानी भी देंगे। लिहाजा ये वक्त आजमाइश का है, लेकिन अल्लाह के फजल से हालात कोई इतने आपे के बाहर नहीं है। कोई 1971 ये नहीं है कि मुल्क टूट के अलग हो रहा है, और ये जिस तरह की परसेप्शन मीडिया में दी जा रही है, ये दुश्मन हमारी परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद रखें इस पाकिस्तान के साथ, हौसला रखिए, यूनाइटेड रहिए, दुश्मन के खेल को समझिए और देखिए, आपस में मुत्तहिद रहिए, और जो कंट्रीब्यूशन आप इस मुल्क के साथ कर सकते हैं, आप ताजिर हैं तो पूरी तरह तजारत में काम कीजिए, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो पूरी तरह अपना काम कीजिए अपनी सिंसियरिटी के साथ, ताकि दुश्मन जो हमारी सोशल और सिविक लाइफ को तबाह करना चाहता है वो उसमें नाकाम हो। और हौसला रखिए और एक दूसरे को भी हौसला दीजिए, क्योंकि बहुत मैसिव कैंपेन हमारे खिलाफ की जा रही है। इस वक्त हम कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से दुश्मन इतना ताकतवर नहीं है कि हमें हड़प कर जाए, वो अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, उसने अपने मोहरे बिठाए जगह पे, और अल्लाह भी हमारी तायद कर रहा है कि जिस तरह कश्मीर में उसने हमारी मदद की, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर उनके बड़े बड़े एसेट्स आपस में टकरा गए या उनके बड़े बड़े एसेट्स को मार पड़ी है अल्लाह के फजल से, तो फिक्र न कीजिए, हालात इंशाल्लाह आगे ठीक होने वाले हैं, ठीक होंगे, लेकिन सियासतदानों को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और आपस में जो इस वक्त ये लड़ रहे हैं और पूरी कौम के जो इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के जो मफादात हैं, कोई सियासी जमात इस वक्त उनका दिफा नहीं कर रही सिवाय अपने मकसद, अपने मफादात और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के, इनको होश में आना पड़ेगा, और डरें उस वक्त से कि जब अल्लाह की पकड़ भी आएगी और अवाम की पकड़ भी इनको होगी, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि हौसला रखें, इंशाल्लाह खैर होगी, कोई ऐसे हालात खराब नहीं है, लेकिन अगर हम मायूस हो गए तो फिर दुश्मन कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह,
हमारे हाथ से निकल जाएगा
इंशाल्लाह।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जैद साहब, आज के इस डिस्कशन को नाज़रीन हम यहीं पर क्लोज करेंगे, हमने बात की पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, आप लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, डेफिनेटली आज की डिस्कशन के बाद आपको काफी कुछ अंदाजा हो गया होगा। जैद साहब की बातें ना सिर्फ एक रिस्क की बातें उन्होंने बहुत सारी की, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ होगा, रोल ऑफ मीडिया के हवाले से मैं कहना चाहूंगी हमने एक स्टेप ले लिया है, बाकी हम अपने जो दीगर हमारे साथी उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज़ को आगे प्रोजेक्ट करेंगे ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो और ये पाकिस्तान जो है हमेशा कायम और दायम रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होकर किसी और टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, बहुत शुक्रिया।